सिद्धं शुद्धं पणमीय जिनिन्द वर्णेमि चन्द मकलंकं गुणरयण भूषणोदयं जीवस्य परोवणं वोचम्। समस्त दोषों से रहित भगवान नेमिनाथ के श्री चरणों में नमन करके और जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं को कथन करने का लक्ष्य बनाया है आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने। गोमठ सार जीव कांड के माध्यम से उसका वर्णन चल रहा है। ये पुस्तक जो आप लोगों के हाथ में है इसका नाम है गोमठ सार जीव कांड सार, यानी लगभग 750 गाथाओं में से केवल 173 गाथाओं का संकलन करके हमें पूज्य माता जी ने सार बताने का ये प्रयत्न किया, जो पुरुषार्थ किया है बहुत ही सराहनीय है कि इसको हर बच्चा सरल भाषा में समझ सकता है। तो आपने 7 प्ररूपणाओं का वर्णन पढ़ लिया है। 8वीं प्ररूपणा है काय मार्गणा, उसके अंदर चल रहे हैं। तो आपने स्थावर और त्रस मूल रूप से काय के दो भेद जाने। स्थावर के 5 भेद होते हैं, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। और त्रस के 5 भेद हैं, कौन कौन से? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री, संगी और असंगी। तो इस प्रकार से आपको ये समझाया गया है। अब स्थावर में ही जो 62 नंबर की गाथा आपने कल पढ़ी थी, वनस्पति काय का स्वरूप और उसके भेद, उसी को आगे ले चलते हैं थोड़ा सा उसके अंदर। और उदये दुवर्णपदिकम् अस्य जीवावर्णपदी होन्ति, पत्येयं सामन्नम्,
पत्येयं सामन्नम्
पदिट्ठिदिदरेति पत्येयम्,
पदिट्ठिदिदरेति पत्येयम्।
कल इसका अर्थ जान चुके हैं आप कि स्थावर नाम कर्म का ही एक अवान्तर भेद है, जो वनस्पति नाम कर्म के उदय से जिनको वनस्पति घास फूस फल पुष्प आदि में जन्म लेना पड़ता है वह वनस्पति कायिक जीव कहे जाते हैं। अब वनस्पति कायिक में 2 भेद हैं, एक प्रत्येक वनस्पति और दूसरी साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति के भी 2 भेद किए हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित भेद। जो इसमें लिखा है प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठित से मतलब सप्रतिष्ठित और दूसरी अप्रतिष्ठित। तो इसमें बताया कि प्रत्येक वनस्पति किसको कहते हैं, जिस वनस्पति का एक जीव का एक ही जो मालिक होता है वनस्पति का, जैसे आम का पेड़, अमरूद का पेड़ या जो पेड़ होते हैं वो एक उस पेड़ का वनस्पति का एक जीव मालिक होता है, फिर उसमें बहुत सारी फल निकलते हैं। तो फल जब तक उसमें लगे रहते हैं पेड़ में तब तक सप्रतिष्ठित कहलाते हैं, सचित्त जिसे कहते हैं, और डाल से टूटते ही वो अप्रतिष्ठित माने अचेतन हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। बहुत सारे लोग अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं खाते, वनस्पति नहीं खाते, सब्जी फल वगैरह नहीं खाते हैं, तो कहते हैं कि उसमें दोष होता है। लेकिन आपको इसमें बहुत अच्छी तरह से जानना है, हमारे जो आर्ष परंपरा में आचार्यों ने कहा है कि पेड़ में लगे रहने तक वह सप्रतिष्ठित है जीव है, और पेड़ से टूटने के बाद वे अचेतन हो जाते हैं। अगर उसमें उसके बाद भी जीव है तो आप सप्तमी को जीव खा रहे हैं, नौमी को जीव खा रहे हैं, तेरस को जीव खा रहे हैं, पूर्णिमा अमावस को जीव खा रहे हैं, मतलब नहीं, तो इन चीजों को समझना, क्योंकि आप देखो जहां पर तपों का वर्णन किया है तो बाह्य तप में रस परित्याग आया, कहीं पर भी हरि त्याग नहीं आया। लेकिन कुछ लोगों ने दूसरी परंपराओं से, श्वेतांबर परंपरा से जैसे ये चीजें सीख ली और हमारे दिगंबर परंपरा में भी आकर के ऐसी घुल मिल गई कि उसका लोग पालन करने लग गए। जिह्वा इंद्री पर कंट्रोल ही करना है तो रस का त्याग कीजिए, आप नमक त्याग कीजिए, शक्कर का त्याग कीजिए, दूध है, घी है, तेल है, दही है, नमक है, तो ये सट रस जो कहे गए हैं उन चीजों का त्याग करना। आप लोग हरी तो त्याग कर देते हैं और बढ़िया छोला मटर खाते हैं। आपने कभी बारीकी से देखा हो जो छोला मटर आप खाते हैं ना, तो उसको पहले दिन भिगोते हैं तो उसके बाद अगले दिन बस उबाल देते हैं। लेकिन बहुत सूक्ष्म बात है, आप इसको समझना, एक एक दाने को यदि उसको शोधन किया जाए, जो हमने बचपन में भी अपनी माँ को देखा है और बहुत सारे जो विचारवान लोग होते हैं तो वो करते हैं, तो किसी मटर में, किसी छोले में जब आपको काली चित्ती दिखे उसको निकालना, ऊपर का परत छिलका, उसके अंदर से निश्चित रूप से घुन जीव निकलेगा। तो कौन निकालता है? जब बड़े बड़े समूह रूप में या घर के अंदर करते हैं तो एक एक चने को कोई भी नहीं साफ करता, ना कोई देखता है। तो आप ऐसे त्रस जीवों को सूखे अन्न के माध्यम से खा जाते हैं और जबकि वनस्पति काय में कोई जीव नहीं है, कोई सब्जी फल के अंदर टूटने के बाद जीव नहीं रहता। इसलिए अपनी गलत धारणाओं को मिटाना। एक बार एक पंडित जी का हमारे सामने प्रसंग आया हस्तिनापुर में, जब मैंने दीक्षा भी नहीं ली थी, उन्होंने कहा भाई मुझे जो है अष्टमी चौदस को हरी मत देना। अब उनका जो व्रती भोजनालय में भोजन बना तो वहाँ मैं गई कि भाई पंडित जी ने हमेशा रख दिया है तो हमारा फर्ज है। मैंने जाके सब देखा, एक कटोरी के अंदर 10-20 मटर हमने जा करके और छोले दिखाए पंडित जी को कि देखो पंडित जी, हमने तो अपने संज्ञान के अनुसार जो हमें बचपन में घर में सिखाया गया और हमने स्वयं देखा है, इसके अनुसार पंडित जी देखो इसके अंदर जीव होता है। और एकदम उनके रोम रोम सिहर गए, वो कहने लग गए कि हम लोग तो जगह जगह जाते हैं, हमने अपने घर के अंदर भी कभी नहीं ये सुना कि ऐसे ऐसे मटर को भिगोने के बाद, छोले को, चने को भिगोने के बाद देखना चाहिए, तो इसके माध्यम से हम कितने त्रस जीवों को खा जाते हैं, हिंसा कर देते हैं। उन्होंने तुरंत उस धारणा को बदला और बोले हम सब्जी खाएंगे, घिया खाएंगे, तोरी खाएंगे, तो ऐसे आप बदलना। इसलिए इस वनस्पति को जानने का ये नहीं मतलब है कि आप जिरह करते जाओ किसमें क्या है, किसमें कैसा कैसी वनस्पति होती है। वनस्पति का एक जीवों को जानने के बाद आपको ये समझना है कि अनंत प्रकार की वनस्पति का या जीवा अनंता अनंता हरिया विया अंकुरा छिन्ना भिन्ना यदेशिम उद्दावणम परदावणम विराणम उगादो कदोआ कारिदोआ कीरंतोआ समणवणिदो तस्मिच्छा में दुक्कड़म। अर्थात वनस्पति का एक अनंत प्रकार के जीव हैं, अनंत प्रकार के वनस्पति है, उसमें से आप गिनती कर लेते हैं बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वनस्पति को आप सदोष कह करके और दूसरी सदोषी चीजों को निर्दोष मान करके खाना आपके लिए गलत है। इसलिए इन चीजों को जानकर बताया कि आपको ये जानना कि प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं, जिसका एक जीव मालिक है। जैसे पेड़ होते हैं उसमें बहुत सारे फल वगैरह लगते हैं लेकिन उस पेड़ का जीव एक ही होता है, और जिस एक ही शरीर में अनेक जीव समान रूप से रहें उस शरीर को साधारण शरीर कहते हैं, और इस तरह के साधारण शरीर के धारण करने वाले उन जीवों को साधारण वनस्पति कहते हैं, क्योंकि इनके साधारण वनस्पति नाम कर्म का उदय पाया जाता है। प्रत्येक वनस्पति के प्रत्येक वनस्पति नाम कर्म का उदय पाया जाता है, साधारण के साधारण नाम कर्म का उदय पाया जाता है। तो साधारण, अब जैसे काई है, काई है तो उसके एक के आश्रित बहुत असंख्य जीव हैं। एक साथ आपने कहीं काई लगी रगड़ दिया बहुत सारे जीव मर गए। तो उन जीवों का शरीर साधारण शरीर होता है। प्रत्येक वनस्पति के भी दो भेद बताएं, एक प्रतिष्ठित और दूसरा अप्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित प्रत्येक उसको कहते हैं कि जिस एक ही जीव के उस विवक्षित शरीर में मुख्य रूप से व्यापक होकर रहने पर भी उसके आश्रय से दूसरे अनेक निगोदिया जीव भी रहें, किंतु जहाँ पर ये बात नहीं है, एक जीव के मुख्यतया रहते हुए भी उसके आश्रय से दूसरे निगोदिया जीव नहीं रहते, उनको अप्रतिष्ठित कहते हैं। तो आपको इतना ही मानना है, जानना है कि जब तक कोई चीज पेड़ में लगी है तो अप्रतिष्ठित है, पेड़ से टूटने के बाद वह अप्रतिष्ठित हो जाती है। अब इसके और ज्यादा डिटेल में नहीं, हम आगे चलते हैं। वनस्पति जीवों के अवान्तर भेद, गाथा नंबर 63। मूलग पोर बीजा,
मूलग पोर बीजा,
कंदाता खंद बीज बीज रुहा,
कंदाता खंद बीज बीज रुहा,
सम्मुच्छिमाय भणिया,
सम्मुच्छिमाय भणिया,
पत्ते आनंत कायाया,
पत्ते आनंत कायाया।
सामूहिक गाथा पढ़िए। मूलग
पोर बीजा, कंदाता खंद बीज बीज रुआ, सम्मुच्छिमाय भणिया, पते आनंत कायाया।
मूलाग्र पर्व बीजा, कंदास तथा स्कंद बीज बीज रुहा, सम्मूर्छिमाश्च भणिता, प्रत्येकानंत कायाश्च। इसका अर्थ है, जिन वनस्पतियों का बीज, मूल, अग्र, पर्व, कंद अथवा स्कंद है, अथवा जो बीज से उत्पन्न होती हैं, अथवा जो सम्मूर्छन है, वे सभी वनस्पतियां सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों प्रकार की होती हैं। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल जानिएगा कि समझना है, वनस्पति अनेक प्रकार की होती है। कोई मूल से उत्पन्न होती है, कंदमूल जैसे कहते हैं कि जैसे गाजर, मूली, अदरक, ये सब मूल से उत्पन्न होती हैं। कोई अग्र से उत्पन्न होती हैं, जैसे कलम, कलम काट करके कलम के आगे के भाग को लेकर के जमाते हैं, तो जैसे गुलाब का है, उदीची, उदीची का मतलब है यहाँ पर जिसे कहते हैं गिलोय, ऐसी चीजें जो बेले फैलती चली जाती हैं। कोई पर्व माने पंगोली से उत्पन्न होती हैं, जैसे गन्ना, गन्ना के पर्व को बीच में जो गांठ होती है उससे उसको बो देते हैं तो गन्ना उग जाता है। बेंत आदि जो कंद से उत्पन्न होते हैं, पिंडालू, सूरण आदि, यानी जिसे आप उसको क्या कहते हैं, उसको कचालू वगैरह, ये चीजें भी ये कंद से उत्पन्न होती हैं। कोई स्कंद से उत्पन्न होती हैं, जैसे सल्लकी, कटकी, पलाश, ढाक आदि। अब ये कोई वनस्पति स्कंद से, यानी कि कोई थोड़ा सा पेड़ का स्कंद लिया गया और उसको जमा दिया गया, ये जम जाते हैं। कोई अपने अपने बीज से उत्पन्न होते हैं, जैसे गेहूं, चना वगैरह। इसलिए कहते हैं, बीज राक फल भोगवे जो किसान जगमाई, त्यों चक्री नृप सुख करें धर्म विसारे नाही। अर्थात बीज को रख करके और जो आगे के बीजों का उपयोग करते हैं तो वो चतुर किसान कहे जाते हैं, क्योंकि आगे बीज से बीज की परंपरा चलती है। तो गेहूं का बीज है, जौ है, चना है, धान है, ये बोया जाता है, ये कटने के बाद में, सूखने के बाद, और फिर कट करके जब आपके घर में आते हैं तो ये अचेतन अप्रतिष्ठित होते हैं। कोई सम्मूर्छन मिट्टी, जल आदि के संबंध से ही उत्पन्न हो जाता, जैसे घास है, किसी ने नहीं लगाया तो भी घास, कई तरह की जंगली वनस्पति पैदा हो जाती हैं। ये सब वनस्पति सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित इस प्रकार से दोनों प्रकार की हुआ करती हैं, और इनमें हम सब ने अनंत बार जन्म को धारण कर करके वनस्पति आदि एकेंद्रीय पर्याय को स्थावर की पर्यायों को प्राप्त करके और नाना प्रकार के दुखों को भोगा है। यही मैंने कल आपको सुनाया था, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर जयमाला हम तो गोमट सार पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्ञानमती माता जी ने इंद्रध्वज विधान, कल्पद्रुम आदि विधानों की जयमालाओं के अंदर ऐसा सिद्धांत भर दिया है कि भक्ति भी करते जाएं, स्वाध्याय भी होता जाए और भगवान के सामने अपने दुखड़े को भी कह करके हम समझो अपने पापों का प्रायश्चित भी करते जाएं। तो इसमें कितना सुंदर सुंदर कहा था कि कोई काटे रौंदी खाए, कोई भाजी साग पकाए, कहीं दमड़ी मूल बिकाए, कहीं करवत चीर दुखाए, जो दुख सहे अनजाने, नहीं मुख से जाए बखाने, फिर कठिन कठिन त्रस हो, लट संक तनु धर्मो। अर्थात इन वनस्पति काय आदि पंच स्थावरों में से यदि कभी कोई पुण्य का उदय अपने आप आ गया, दो इंद्री लट चीटी संक ततया इन पर्यायों को धारण किया, तो चिमटी खटमल तन धारे, बिच्छू आदि के अवतारे, मधुमक्खी भ्रमर जू तन धर धर पुनि पुनि मुओ, पंचेंद्रिय पशु तन धार्यो, नई क्रूर पशु बन मार्यो, संक्लेश भाव से मर्यो, तब नरक गति में पर्यो। ऐसी जयमालाओं को पढ़े आप, एक विधान की पुस्तक रख लीजिए, एक जयमाला प्रतिदिन पढ़ने का नियम कर लीजिए, किसी में अध्यात्म रस, किसी में करुणा रस, किसी में वैराग्य रस, किसी में वीर रस, और कोई कोई जयमाला भक्ति रस से वो तब प्रोत रहती हैं। असंख्य कर्मों की निर्जरा होकर अनंत पुण्य का संचय हो जाता है। तो भव्यात्माओं, इस प्रकरण को पढ़ते पढ़ते आपको जानना है कि पंच स्थावर की पर्यायों में भी हमने जाकर अनंत अनंत बार दुखों को भोगा है। हम घास भी हुए, हम सब्जी भी हुए, भाजी भी हुए, और हम जल का एक वायु का एक सब पर्यायों में गए, और त्रस में भी दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री की पर्यायों में भी जाकर बहुत ही मुश्किल से दुर्लभता से मनुष्य की पर्याय अब प्राप्त हुई है। इसलिए मनुष्य की पर्याय में अब हमें पूरी तरह से भगवान की भक्ति में खो जाना है। इसीलिए कहा इसी जयमाला के अंत में पूज्य माता जी ने, इस विधि चहूं गति दुख पायो, सुख लेस निमित भर मायो, जिन राज कृपा तुम पाई, सम कितनी दी हाथ में आई, जब तक प्रभु मुक्ति न होवे, ये सम्यक रतन न खोवे, बस ये ही अरज सुनीजे, अंतिम सुसमाधि कीजे। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति न होने पाए, तब तक मेरा सम्यक दर्शन बना रहे। ये सम्यक दर्शन रत्न है, ये खोने न पाए, और ये मेरी अरज आप सुन लेना, और मुझे क्यों कैसे ये पर्याय सार्थक होगी, अंतिम सुसमाधि कीजिए। अंत में यदि समाधि मरण मिल गया तो समझो कि अब हमें त्रस की तुच्छ योनियों में पर और स्थावर की तुच्छ योनि में हमें जन्म लेने को नहीं मिलेगा। तो भव्यात्माओं, आप सबको हमने ये 63 नंबर की गाथा तक स्वाध्याय कराया है, और आगे ले चलूंगी क्योंकि 87 नंबर तक आपको पढ़ करके और 28 फरवरी को परीक्षा देना है। 28 फरवरी को आपकी परीक्षा वेद मार्गणा तक होगी, और उसमें 27 नंबर की गाथा से लेकर 87 नंबर की गाथा तक पढ़ करके आपको पूरा पूरा उसका अध्ययन करके गोमट सात जीव कांड के सार को आत्मसात कर लेना है। एक एक प्रश्न के हम जब चार चार उत्तर देते हैं तो लोग कभी कभी भटक जाते हैं, क्योंकि सैकड़ों लोग परीक्षा देते हैं, तब इसके अलावा कोई रीति अपना भी नहीं सकते। कंप्यूटराइज व्यवस्था होती है और उसके अंदर सही उत्तर अपने आप आ जाता है, बता देता है, तब पता लगता है आपके कितने नंबर आए हैं।